मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत यदि समय मिला तो, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यदि समय मिला तो मैं शेयर मार्केट में कल जो भारी गिरावट हुई है उस पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण खबरें हैं पहले मैं उन पर चर्चा करना चाहूंगा। पहले दोस्तों एक संशोधन है, क्लेरिफिकेशन है, और वो ये कि कुछ दिनों पहले मैंने शायद एक बात कही थी कि जिस तरीके से हमारे राष्ट्रपति लोकसभा में दो एंग्लो इंडियंस सदस्यों को नामजद करते हैं, इस तरह की कुछ बात मैंने कही थी, तो मैं इसे करेक्ट करना चाहूंगा। खासकर हमारे यहां फिर 104वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया, बिल पारित किया गया, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम बना, और उसके तहत अब ये जो दो एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नामजद किया जाता था, नॉमिनेट किया जाता था, उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। तो प्लीज इसे आप करेक्ट कर लें। दोस्तों, जो दूसरी खबरें हैं वो छोटी छोटी खबरें ही हैं। आपने अखबारों में पढ़ा कि जो राजीव कुमार अभी खासकर चुनाव आयुक्त हैं, अब वे मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। राजीव कुमार जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हैं, झारखंड कैडर हैं, और जब मैं दिल्ली में था तो उनसे काफ़ी मुलाकातें होती रहती थी। बहुत ही अपराइट ऑफिसर, और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही सरल और सहज व्यक्तित्व के मालिक हैं, बहुत ही सरल और सहज व्यक्ति हैं, बल्कि मैं इस शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा कि वो बहुत ही प्यारे व्यक्ति हैं। अब वो मुख्य चुनाव आयुक्त होने जा रहे हैं। अखबारों में ही आपने पढ़ा कि रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। खासकर श्रीलंका में जिस तरह के संकट की स्थिति आ गई है, इसको देखते हुए बहुत जरूरी था कि सत्ता की बागडोर किसी न किसी के हाथों तो सौंपी जाए। क्योंकि जो रानिल विक्रमसिंघे हैं वो इससे पहले भी कई बार वहां के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनका जो अनुभव है, निश्चित रूप से अभी श्रीलंका की जो बहुत ही बुरी स्थिति चल रही है, तो शायद उनको नियंत्रित करने में कुछ मददगार सिद्ध हो सके, तो उन्हें अब लंका का प्रधानमंत्री बनाया गया है। बस सामान्य सी जानकारी के लिए, चूंकि श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, भले ही वो एग्जाम में पूछा जाए या ना पूछा जाए। देखिए, यहां मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि सारी पढ़ाई एकदम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होनी चाहिए। हमारे आसपास और क्या दूसरी घटनाएं हो रही हैं, उनके प्रति भी हमें सतर्क रहने की जरूरत होती है। हो सकता है कि वे हमारी जानकारियां सीधे सीधे हमारे काम की न हो, सीधे सीधे एग्जाम में उन पर क्वेश्चन न पूछे जाएं, लेकिन आपके आंसर राइटिंग में, या यूं कह लीजिए कि अगर हम प्री एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो सही उत्तर तक पहुंचने में इस तरह की जो जानकारियां हैं बहुत ज्यादा मदद करती हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट जो खबर है, अखबारों में आपने शायद पढ़ी होगी, सारे अखबारों ने तो ये नहीं लिया है, कि जो नेटो एक संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान अक्सर आपको इस संगठन के बारे में सुनने को पढ़ने को मिलता है। ये एक सैन्य संगठन है। एक देश है फिनलैंड, आप जानते हैं फिनलैंड के बारे में, मैंने इससे पहले बात की थी जब हमारे प्रधानमंत्री जी अभी विदेश की यात्रा पर गए थे फिनलैंड। तो फिनलैंड ने घोषणा की है कि वह नेटो का सदस्य बनेगा, ये उसने घोषणा की है। इसको लेकर के रशिया में फिर से एक खदबदाहट सी है, क्योंकि रशिया नहीं चाहता है कि जो नेटो संगठन है वो मजबूत हो, और आपको मालूम है कि यूक्रेन पर भी जो उसने अटैक किया है उसके पीछे यही सबसे बड़ा कारण है कि यूक्रेन ने कह दिया था कि वो नेटो का सदस्य बनने जा रहा है। उससे रशिया को यह लगता है कि उसकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो फिनलैंड ने अभी यह घोषणा की है, और रशिया ने इसका विरोध भी किया है, एक प्रकार की चेतावनी भी दी है, लेकिन अभी वह बना नहीं है। बस आपकी जानकारी में ला रहा हूं कि जिस दिन यह घटना घटित हो जाए आप उसे दिमाग में रख लीजिएगा प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से। अब तो हम नेक्स्ट प्री की ही बात करेंगे, यह एक महत्वपूर्ण खबर हो सकती है। ठीक इसी तरह से जैसे नेटो के लिए फिनलैंड ने घोषणा की है, तो पिछले कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि जो दक्षिण कोरिया है वो क्वाड का सदस्य बनने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुका है। क्वाड में आप जानते हैं कि कौन कौन चार देश हैं, और क्वाड का पर्पज ये आप जानते हैं, क्योंकि इस पर हम लोगों ने खूब सारी बातें की हैं, कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो लगातार चीन अपना आधिपत्य बढ़ाता चला जा रहा है, तो उसको एक प्रकार से यूं कह लीजिए कि नियंत्रित करने के लिए ये चार देशों का संगठन बना है क्वाड। तो अब दक्षिण कोरिया ने इसके लिए अपनी इच्छा जताई है। दक्षिण कोरिया के लिए एकदम से इसे स्वीकार कर पाना या शामिल हो पाना इसमें शायद थोड़ा सा कठिन जरूर है, क्योंकि दक्षिण कोरिया और चीन के संबंध बेहतर हैं। और ये जो क्वाड है आप जानते हैं कि एक प्रकार से सीधे सीधे तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं चीन की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं प्रचार की, साम्राज्यवाद की, आप ये कह लीजिए सो कॉल्ड साम्राज्यवाद की, इंपीरियलिज्म की, उसको नियंत्रित करने के लिए है। तो लेट अस सी क्या होता है, लेकिन दक्षिण कोरिया के इस इच्छा पर भी आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के अखबारों में काफी कुछ आज लिखा गया है, कल न्यूज चैनल्स पर भी इसकी काफी चर्चा थी। दो घटनाएं कल महत्वपूर्ण हुई हैं। पहला तो यह है कि बनारस में जो ज्ञानवापी मस्जिद है, पहले कहा गया था कि इसका सर्वे कराया जाए और पता लगाया जाए कि वास्तव में ये क्या है, लेकिन बाद में कुछ मामला गड़बड़ हो गया था। तो अब वहां के जिला एवं सत्र न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से आदेश दे दिया है कि नहीं, वहां का सर्वे कराया जाएगा और बिना किसी रुकावट के, और यदि कोई रुकावट डालने की कोशिश करता है तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि वो इन रुकावटों को दूर करे। उसके बकायदे सर्वे होनी चाहिए, वीडियोग्राफी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि वास्तव में जहां अभी ये मस्जिद बनी है वो पहले क्या था क्या नहीं था। मुझे लगता है कि खासकर सेशन कोर्ट ने जो ये निर्णय दिया है अपने आप में बहुत ही महत्व का निर्णय है। ये बात यहीं खत्म नहीं होगी, देखिए आगे और भी बातें बढ़ेंगी, क्योंकि सर्वे में क्या रिपोर्ट आती है, डेफिनेटली उस रिपोर्ट के आधार पर आगे और भी बहुत सी इस तरह की डिमांड हो सकती हैं। जैसे देख रहे होंगे आप, अखबारों में पढ़ भी रहे होंगे कि दूसरों के लिए भी मांग होने लगी है। जहां तक मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात है, उसे मुक्त कराने की बात है, लंबे समय से उसकी मांग भी हो रही है, कोर्ट में केस भी चल रहा है, और बकायदे इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने या मथुरा कोर्ट को यह आदेश भी दे दिया है कि 4 महीने के अंदर वो इसके बारे में फैसला करे, तो इस पर भी डिसीजन आ जाएगा। कुतुब मीनार के बारे में भी आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि बकायदे कहा जा रहा है कि इसे इसका नाम बदला जाए और ये विष्णु स्तंभ कुछ इस तरह का नाम इसका रहा है, इसको नामकरण किया जाए। और ठीक इसी तरह से मध्य प्रदेश में जो धार नगरी है, जो राजा भोज की राजधानी रही थी, वहां पर सरस्वती का एक मंदिर सा है, आप कह लीजिए कि उसकी जो प्रतिमा है सरस्वती प्रतिमा, वो अभी लंदन के संग्रहालय में है, उसे भी लाने की मांग होती है, तो उस पर भी अब इस तरह की मांगें शुरू हो गई है। तो डेफिनेटली खासकर ज्ञानवापी मस्जिद के जो सर्वे रिपोर्ट्स आएंगे उनका इम्पैक्ट इस पर भी पड़ेगा। ये कहना तो मुश्किल है कि इस घटना पर सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन इस घटना से जुड़े हुए जो दूसरे सैद्धांतिक विचार हमारे सामने आएंगे, जो परिस्थितियां सामने आएंगी, उन पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों, इन सब पर जब भी एडिटोरियल कमेंट्स आएंगे या आर्टिकल्स आएंगे तो आप थोड़ा सा उन्हें खासकर सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से, राष्ट्रीयता की दृष्टि से, राष्ट्रवाद की दृष्टि से देखने और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आप लोगों को एक बिजनेस स्टैंडर्ड का एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं जो स्वनियमन के बारे में है। देखिए, कुछ समय से आप महसूस कर रहे होंगे कि मैं एक आर्टिकल लेता हूं और उसका उपयोग आप किस किस तरीके से अलग अलग रूपों में कर सकते हैं, इस पर भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। जैसे स्वनियमन है, ये खासकर जो एजुकेशन से रिलेटेड जो ऑनलाइन जो कंपनियां आई हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं, आपको बहुत अच्छे से मालूम है, मुझसे भी ज्यादा आप जानते होंगे, एजुटेक कंपनी कहा जाता है इनको, है ना, एजुटेक कंपनी, यानी कि जो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी के तहत काम कर रही है या कह लीजिए टेक्नोलॉजिकल तरीके से एजुकेशन दे रही है। तो उसमें एक घटना की चर्चा की है कि एक बहुत बड़ी एजुकेशन की कंपनी है, उसे एक उपभोक्ता को हर्जाने के रूप में धन देना पड़ा था, और उसको लेकर के फिर अब ये जो एजुकेशन टेक कंपनियां हैं, इन्होंने अपने लिए ही अब नियम बनाना शुरू कर दिए हैं कि किस तरीके से वो उन्हें बकायदे विज्ञापन देना चाहिए, भ्रमात्मक विज्ञापन न हो, ताकि जो उपभोक्ता है वो बहुत स्पष्ट रूप से संदेश को ग्रहण कर सके। एजुकेशन की कंपनियां इस तरीके से कितने भ्रमात्मक विज्ञापन देने लगी हैं, ये आप सबके सामने है, शायद आपका अनुभव भी रहा होगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एजुकेशन टेक कंपनियों के साथ ही है, दूसरी कंपनियां भी यही कर रही हैं। तो इन्होंने स्वनियमन तैयार किया है, मतलब एक आचार संहिता बनाई है, और आपको मालूम है कि आपके जनरल स्टडीज के 4th पेपर का यह विषय है आचार संहिता, है ना। हर प्रोफेशन के अपने एथिक्स हैं, मेडिकल प्रोफेशन के एथिक्स होते हैं, वकील जो है उनके अपने एथिक्स होते हैं, बिजनेस के अपने एथिक्स होते हैं, स्पोर्ट्स के अपने एथिक्स होते हैं, ठीक इसी तरह से एजुटेक कंपनी के भी अपने एथिक्स हैं। तो आप इसका उपयोग बकायदे एथिक्स के प्रश्न के उत्तर में कर सकते हैं, चूंकि यह एक लेटेस्ट मामला है, और बेहतर होगा कि आप इसे थोड़ा सा पढ़ भी लें तो चीजें आपके दिमाग में और अधिक स्पष्ट हो सकेंगी। दोस्तों, आज मैं आपको दैनिक भास्कर का एक बहुत अच्छा आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, बराबरी एक सपना है या साकार होने वाला सच, हरिवंश जी का लिखा हुआ है, राज्यसभा के जो उपसभापति हैं, और मैं हमेशा इनके आर्टिकल पढ़ता हूं। ये बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को लिखते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो एरिया ऑफ स्टडी है वो बहुत वाइड है, और जो लेटेस्ट चीज़ें आती रहती हैं उन्हें भी ये पढ़ते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जब ये पढ़ते हैं तो इनकी पढ़ी हुई लेटेस्ट बातें हम जैसे लोगों को दैनिक भास्कर के जरिए पता लग जाती हैं। ये आर्टिकल आप पढ़िएगा और बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये समानता के ऊपर है। इसमें कुछ रेफरेंसेज आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। जैसे एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिनका नाम इन्होंने लिया है पिकेटी। पिकेटी इकोनॉमिस्ट हैं बेसिकली, और उनकी अभी एक किताब आई है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इक्वेलिटी, यानी कि समानता का संक्षिप्त इतिहास। इसमें उन्होंने दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। एक तो जो उन्होंने जो अपनी बात रखी है वो खासकर फ्रांस की क्रांति के बाद, अब लगभग 300 साल हो गए हैं फ्रांस की क्रांति को, 300 से ज्यादा ही साल हो गए, 350 साल आप कह सकते होने जा रहे हैं, उसके बाद से कैसे समाज में परिवर्तन आता चला गया है और हम लगातार इन इक्वेलिटी से यानी कि असमानता से समानता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, इसको इन्होंने प्रूव किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने यह बात कही है कि जो मानव समाज है वो लगातार बराबरी की दिशा में बढ़ रहा है, यानी कि इक्वलिटी की दिशा में बढ़ रहा है। फिर इसके पृष्ठभूमि के रूप में इससे ठीक ऊपर के पैराग्राफ को आप ध्यान दीजिएगा, तो उसमें यह बात कही गई है कि कुछ सौ साल पहले तक ये माना जाता था कि जो असमानता है वो तो स्वाभाविक है क्योंकि प्रकृति में ही असमानता है, लेकिन कार्ल मार्क्स ने पहली बार ये कहा कि नहीं, ये जो समानता है ये ईश्वर की देन नहीं है, ये समाज की देन है। इसके बाद फिर 17वीं शताब्दी में हॉब्स आए, लॉक आए, ये दो बहुत बड़े विचारक आए, उन्होंने प्राकृतिक समानता के सिद्धांत को हमारे सामने रखा। रूसो का नाम आप सबने सुना है, रूसो ने फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी, तो उसके आधार पर फिर चीजें बदली और लोगों ने यह सोचना शुरू किया कि नहीं नहीं, ये जो असमानता है ये स्वीकार्य नहीं है, ये प्रकृति की देन नहीं है, ये ईश्वर की देन नहीं है, इसे बदला जा सकता है और हम समानता के स्तर पर पहुंच सकते हैं, एक समानतापूर्ण समाज की स्थापना हो सकती है। चूंकि समानता आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे आप जब पढ़ लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेंगे तो ये जो टॉपिक है आपका और अधिक मजबूत और साथ ही साथ अपडेटेड हो जाएगा। दोस्तों, मैंने सोचा था कि मुख्य विषय के बारे में मैं आप सबसे बात कर सकूंगा, लेकिन नहीं कर पाया हूं। आगे हम देखेंगे, खासकर शेयर मार्केट में आपने देखा होगा कि भारी गिरावट आई है और इसके बारे में अखबारों ने लिखा भी है कि उसके कौन कौन से कारण हैं, तो प्लीज आप ध्यान से उसे पढ़ लीजिएगा। और फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो कारण बताए गए हैं कि शेयर बाजार में इस वजह से गिरावट आई है, तो बेहतर होगा कि आप उन कारणों को अपने अपने ढंग से एक्सप्लेन करके और इकोनॉमिक्स को समझें कि ये कारण शेयर मार्केट की गिरावट के लिए कैसे हो सकते हैं, ऐसी क्या स्थिति है कि इसकी वजह से शेयर मार्केट गिर रहा है। दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। हम लोगों की जो ऑफलाइन क्लासेस हैं 7 से 21 अक्टूबर के बीच होने वाली हैं, और इसके लिए एक स्टूडेंट ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इनका नाम है मंजीत कुमार सोहन लाल धोबी, आप मुंबई महाराष्ट्र से हैं। तो मंजीत कुमार जी, आपका एकेडमी की ओर से मैं बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। रवीना राय खपुरा बिहार से हैं, और रवीना तुमने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छा मेल लिखा है, इसके लिए तुमको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दूसरे दो साथी हैं नितिन कुमार और अभिषेक कुमार मुजफ्फरपुर से, आप दोनों का भी बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। 3 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब और ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।